Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhakti Prashnopanishad ka vichar Pravachan Satra mein hum log kar rahe hain. इस उपनिषद के छह प्रकरणों में से पंचम प्रकरण का विचार हो रहा है। आचार्य पिपलाद जी के पास आए हुए छह ऋषियों में से सत्यकाम नाम के ऋषि ने आचार्य पिपलाद जी से जो जीवन पर्यंत ओंकार की उपासना करते हैं साधक, उन्हें कौन सा फल प्राप्त होगा, ये जिज्ञासा की। तो ओंकार को माना जाता है परब्रह्म अपर ब्रह्म उभय ब्रह्म का प्रतीक। उपासक जिस ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा से ओंकार रूप प्रतीक में ब्रह्म का चिंतन करता है, वह ओंकार उसे उसी उसके अभिलषित ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराता है। अभिलषित कहा जाता है अभिलाषा के विषय को। अभिलाषा है इच्छा, तो जिसे प्राप्त करने की इच्छा है उसकी प्राप्ति करा देता है। यहां ओंकार उपासना है विधेय, और उस ओंकार उपासना रूप विधेय का विधान करने के लिए आएगी पंचम कंडिका, उसमें विधान होगा। जिसका विधान करना होता है शास्त्र, उसका महत्व बताता है। विधान किया जाता है किसी साधन का, उस साधन में अधिकारी को प्रवृत्त करने के लिए। तो ओंकार उपासना रूप साधन में अधिकारी की प्रवृत्ति सिद्ध हो, इसके लिए ओंकार उपासना की प्रशंसा की जा रही है कैमुतिक न्याय से। कैमुतिक एक न्याय होता है, कैमुतिक न्याय कहा जाता है कि जब किसी का अल्पसा अंश भी बड़ा प्रयोजन देता हो, तो पूर्ण जो अंशी है वह निश्चित ही उससे भी महान फल प्रदान करेगा। इसके विषय में क्या कहा जाए, का मतलब होता है निश्चित ही वो फल होगा। जिसका एक अंश चिंतन भी व्यर्थ नहीं जाता, तो संपूर्ण अंशी का चिंतन निश्चित ही फल प्रदान करेगा, इसके विषय में क्या कहना है। ये कहने से अर्थ निकलता है कि निश्चित ही वो ओंकार उपासना अभीष्ट प्रदायक है, और मुख्य रूप से ये पराविद्या के प्रकरण में ओंकार उपासना आई, तो पराविद्या का जो फल है परब्रह्म की प्राप्ति, वो परब्रह्म की प्राप्ति ओंकार उपासक को हो जाए, तो परब्रह्म की प्राप्ति तो सुना गया कि पराविद्या से होती है। पराविद्या ने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, तो ओंकार उपासना परब्रह्म की प्राप्ति कैसे कराएगी, ये जो संशय है चित्त में अधिकारी के, वह ओंकार उपासना में प्रवृत्त नहीं होने देगा। इसलिए उस संशय की निवृत्ति के लिए बताया जा रहा है कि जो ओंकार है उसके अलग अलग तीन मात्रात्मक तीन अंश हैं, उन एक एक मात्राओं को कहा जाता है ओंकार का व्यस्त स्वरूप, और तीनों मात्राएं मिलकर के एक स्वरूप बना, वो है ओंकार का समस्त स्वरूप। तो एक एक मात्रात्मक स्वरूप का भी चिंतन लोकांतःपाती उत्कर्ष रूपी फल देता है, तो समस्त ओंकार का चिंतन अलौकिक जो मोक्ष है, परब्रह्म की प्राप्ति है, वो जरूर कराएगा। ये विश्वास दिलाने के लिए तृतीय कंडिका में व्यस्त ओंकार का जो प्रथम मात्रात्मक स्वरूप है अकार, इसी का जो चिंतन कर रहा है उसका वह चिंतन भी उसे साधक जन्म दिलाता है, मनुष्य का ही, मनुष्य से निकृष्ट योनि में नहीं पहुंचाता, अपितु मनुष्य योनि में ही जन्म दिलाता है। और मनुष्य योनि में भी वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होता है, और ये तीनों चीजें हो, इंद्रिय तथा मन की एकाग्रता और गुरुकुल वासादि तथा शास्त्रों के प्रति आस्था, प्रामाण्य बुद्धि, श्रद्धा, तो वह साधक अपने आयु को व्यर्थ जाने नहीं दे सकता, अपितु सदुपयोग करता है। जहां उसकी साधना छूटी थी परब्रह्म प्राप्ति की, वहां से आगे की साधना करना प्रारंभ करता है। इसलिए गीता में भगवान ने छठवें अध्याय में कहा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। जो उसकी पूर्व जन्म की साधना के अनुकूल वातावरण वाला परिवार है, ऐसे परिवार में उस साधक का जन्म हो जाता है एक मात्रात्मक ओंकार की उपासना करने से भी, व्यस्त स्वरूप का चिंतन करने से भी। अब ये बताया जा रहा है कि गीता में योग भ्रष्ट साधक का दो प्रकार का जन्म बताया है ना। योग भ्रष्ट कहा जाता है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है, लेकिन आयु प्रारब्ध क्षीण होने से समाप्त हुई, परब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार नहीं हो पाया, परब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बीच में ही प्रारब्ध क्षीण होने से शरीर छूट गया। तो अर्जुन ने पूछा, ऐसे साधक की क्या स्थिति होगी, क्या वह जैसे बादल आ जाए और ऐसा लगे कि अब बरसने वाले हैं, और उतने में खूब जोर की हवा आए और उन बादलों को छिन्न विच्छिन्न कर दें, तो निष्फल हो गए ना वे बादल, वो वायु ने उसे निष्फल कर दिया, बरसते तो माना जाता सफल हो गए बादल। ऐसे क्या उस साधक की साधना व्यर्थ ही हो गई, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा था, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं इसलिए मुक्त तो होगा नहीं, और कोई दूसरा साधन किया नहीं लोकांतपाती फल प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा कोई साधन न होने से उसे कोई उत्कर्ष लोक में तो प्राप्त होगा नहीं, तो क्या वो उन बादलों के तरह छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण मार्ग पर चल रहा है उसकी दुर्गति तो संभव ही नहीं है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तो उसके दो प्रकार के जन्म बताए गए, ऐसे योग भ्रष्ट साधक, वो योग भ्रष्ट साधक हुआ, साधना करते करते बीच में शरीर छूटा उसका, तो उसके शरीर छूटते समय मन की स्थिति को देख करके दो प्रकार के जन्म होते हैं। वैराग्य की वृत्ति शरीर छूटते समय यदि तीव्र रही तो योगी के घर में जन्म होता है और वहां से फिर साधना करता है, और जहां साधना छूटी वहां से आगे की वो साधना कर रहा है, पूरी होते ही फिर ब्रह्म ज्ञान हुआ, तुरंत मुक्त हुआ। और यदि योग भ्रष्ट का शरीर छूटते समय वैराग्य की वृत्ति में कमी रही, उस समय फिर उसका क्या होगा, तो द्वितीय मात्रा का चिंतन करने वाले उपासक की स्थिति को बताते हुए कहा जा रहा है, वह भी मनुष्य का जन्म तो तुरंत नहीं लेता, साधक जन्म, उसे जाना होता है स्वर्ग लोक में, और वहां जाकर के वैराग्य की कमी थी ना, तो ब्रह्म लोक वहां स्वर्ग के भोग भोगेगा, और फिर वहां का बहुत दिनों तक रह करके भोग भोग करके मन जब तृप्त होगा, उनके प्रति वैराग्य की भावना वहीं पर जगेगी, तो फिर वह मनुष्य लोक में वापस आकर के साधक बनता है। इसे बताया जा रहा है चतुर्थ कंडिका में कि अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिर उन्नीयते सोमलोकम स सोमलोकम सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। तो ये बताया जा रहा है कि यदि कोई उपासक ओंकार की द्वितीय मात्रात्मक व्यस्त स्वरूप का चिंतन करता है, तो द्वितीय मात्रात्मक हाँ तो यहां पर लिखा है ना कि सो अंतरिक्षम यजुर्भिर उन्नीयते सोमलोकम, तो अंतरिक्ष शब्द से लेना अंतरिक्ष है आधार जिस लोक का, ऐसा स्वर्गलोक वही सोमलोक है, उसी को सोमलोक भी कहा जाता है। और देवता शरीर को कहा गया पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में सोम, और सोमलोक का अर्थ है जैसे इस पृथ्वी लोक को कहा जाता है मनुष्य लोक, मनुष्यों का निवास भूत लोक ओ मनुष्य लोक, ऐसे सोम शब्दित देवता और उनके निवास का स्थानभूत जो लोक उसे कहा जाएगा सोमलोक, और सोमलोक का विशेषण है अंतरिक्षम, इसलिए अंतरिक्षम का अर्थ निकलेगा अंतरिक्ष है आधार जिस लोक का, ऐसा सोमलोक। नहीं, स्वर्ग ही सोमलोक है, मकार की उपासना करने वाला स्वर्ग से भी ऊपर सत्यलोक जाएगा, ब्रह्मलोक जाएगा। स्वर्गलोक अलग है, ब्रह्मलोक अलग है। तो यहां उकार की उपासना करने वाला सोमलोक में यानी स्वर्ग में जाएगा, ये बताया जा रहा कि अथ यदि द्विमात्रेण पूर्व वाक्य से ओंकारम अभिध्यायित, ये दो पद ले आना, तो द्विमात्रेण यानी द्वितीय मात्रात्मक ओंकार का अभिध्यान करता है जो साधक, उसकी क्या स्थिति होती है। और अभिध्यान शब्द का अर्थ बताया था कि जिसका ध्यान कर रहा है उसमें तादात्म्य अभिमान पर्यंत ध्यान, तब माना जाता है कि वो अभिध्यान पूरा हुआ। यानी कि थोड़ा दो चार सेकंड के लिए ओंकार की द्वितीय मात्रा के अर्थाकार वृत्ति बन गई और फिर उपासना पूरी हुई, ऐसा नहीं होता। उसमें तादात्म्य हो जाए, जैसे वर्तमान में अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान है, ऐसा तादात्म्य अभिमान उकार मात्रा में हो जाए। जो उकार का अर्थ बताया है, उकार के ऋषि किसको बताया गया था, वायुलोक को। वायु ऋषि हैं, वायु लोक नहीं, वायु नाम के देव ऋषि हैं, और उनका वो देवता हैं उकार मात्रा के विष्णु, और अधिदेव स्थान बताया गया था अंतरिक्ष लोक भूव, और अध्यात्म है स्वप्न स्थान, और वेदों में है यजुर्वेद। ये जो मकार का अर्थ है और इनके उकार का, और इनके अभिमानी वेष्टि स्वप्नाभिमानी तेजस जीव और समष्टि अधिदैव में हिरण्यगर्भ, इन दो सब का पहले बुद्धि में उकार अर्थ के रूप में ठीक से निश्चय कर लेता है। ठीक से निश्चय करने के बाद फिर वह कर लेता है ऐसा ही चिंतन, और जब तक उसका इस अर्थ सहित मकार मात्रा में उकार मात्रा में तादात्म्य अभिव्यक्त नहीं होता तब तक कर रहा है। इसे बताने के लिए यहां उकार मात्रा का अभिध्यान उकार मात्रा में तादात्म्य अभिमान पर्यंत है, इसे दिखाने के लिए ही ये लिखा कि मनसी संपद्यते। यहां मनस शब्द से मन शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है अंतकरण, वो नहीं लेना। यहां मन शब्द से लेना उकार रूपा ओंकार की द्वितीय मात्रा, वो मन शब्द से लेना है। तो इसलिए मनसी यानी उकारे संपद्यते, और संपत्ति है तादात्म्य अभिमान। तो उकार में तादात्म्य अभिमान प्राप्त कर लेता है उकार का चिंतन करते करते करते, तो माना जाता है वो उकार की उपासना पूर्ण हुई। इसलिए मनसी संपद्यते वाक्य का प्रयोग करके श्रुति बता रही है उकार मात्रा की उपासना जब परिपूर्ण हो जाती है, तो ये भी व्यस्त स्वरूप है ओंकार का, कोई समस्त स्वरूप नहीं है, और ये व्यस्त स्वरूप का चिंतन भी उसे फल दे रहा है। उकार ये मन शब्द का अर्थ उकार कैसे हुआ, तो इस प्रकार होता है कि मन अकेला ही बाह्य इंद्रियों की सहायता के बिना जिस अवस्था में सब व्यापार होता है, व्यापार रत रहता है, ऐसी अवस्था मन शब्द से लक्षणा से लेना। तो कौन सी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्था में से कौन सी अवस्था है जिसमें बाह्य इंद्रियों के बिना मन सक्रिय होता है, वो स्वप्न अवस्था है, पहले बताया था। तो स्वप्न अवस्था में अकेला मन ही सब व्यापार होता है, प्राण तो तीनों अवस्था में होता है, इसलिए मन शब्द से लक्षणा से ली जाएगी। अकेला मन बाह्य इंद्रियों को अपने में समाहित किया हुआ व्यापार से युक्त होता है जिस अवस्था में वह अवस्था, यह मन शब्द का लक्षार्थ होगा। तो स्वप्न अवस्था अर्थ निकलेगा मन शब्द का लक्षार्थ, और स्वप्न अवस्था के साथ संबंध है, स्वप्न अवस्था अध्यात्म स्थान है उकार मात्रा का। इस प्रकार ये मन शब्द से उकार मात्रा को लिया जाता है और उसमें संपद्यते का अर्थ है तादात्म्य अभिमान जिसका हो गया ऐसा साधक, उसका क्या होता है वो उकार मात्रा की उपासना का परिपाक जिसके हुआ। तो कहते सो अंतरिक्षम यजुर्भीर उन्नीयते सोमलोकम, तो स शब्द से लेना उस उपासक को जिसकी उकार मात्रा की उपासना परिपूर्ण हुई, प्रारब्ध का क्षय हो गया, शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई उसकी, और मृत्यु के समय उसके चित्त में वैराग्य की मात्रा कम रही, वैराग्य वृत्ति नहीं रही, ऐसी स्थिति में वह सीधे वो मनुष्य शरीर में साधक बनकर के नहीं आएगा। तो उसके वैराग्य को प्रकट करने के लिए ही उसे स्वर्गलोक ले जाया जाता है। ये यहां पर बताया जा रहा है कि स यानी मृतः ओंकार ओंकार की उकार मात्रा का चिंतन करने वाला उपासक, वह यजु भी द्वितीय मात्रा रूपा जो यजुए हैं, यजुर्वेद है ना द्वितीय मात्रा का वेद, इसलिए यजुर्वेदात्मक जो द्वितीय मात्रा वो क्या करती है चिंतित सोमलोक ले जाती है। सोम शब्द का अर्थ है देवलोक, देव यानी इंद्रादि, इंद्रादि शरीर को कहा जाता है सोम शब्द से, और सोमलोक हुआ इंद्रादि देवता जिस लोक में रहते हैं ऐसे लोक, वो अंतरिक्ष आधार है उनका, उसमें ले जाया जाता है। उन्नीयते का अर्थ ले जाया जाता है अर्थात देवता भाव की प्राप्ति कराई जाती है। फिर भगवान ने वहां पर कहा कि उत्तम लोकों को प्राप्त करके अनेकों वर्षों तक वहां रहता है, उषित्वा शाश्वती समा, फिर वह इस मनुष्य लोक में आता है, वहां हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में नहीं रहता। ये कहा जा रहा है कि स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, ओंकार उपासना अपने उपासक को उसका जो लक्ष्य है निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति यानी मोक्ष, वो मुक्त करा करके ही वो पूर्ण होती है, उससे पहले तक उसका दाम हाथ नहीं छोड़ती। एक बार ओंकार का दामन जिसने पकड़ लिया तो ओंकार उसकी उसको हाथ पकड़ करके मोक्ष तक पहुंचा देता है, इसे दिखाना है। इस दृष्टि से ये कहा गया कि वो सोमलोक में गया और वहीं पर हमेशा के लिए भी रहेगा, फिर मुक्त नहीं हो पाएगा ना, इसलिए वहां पर विभूतिम अनुभूय देवलोकों का जो ऐश्वर्य है वो उस ऐश्वर्य को खूब अनुभव कर लेता है, स्वर्गीय भोग भोग लेता है, और भोगते भोगते जब तृप्त हो जाता है वहां के भोगों से, फिर भोग भोगते भोगते तृप्ति होने के बाद अंदर वैराग्य होगा, और वो देवता शरीर छोड़ते समय वैराग्य की वृत्ति रहेगी, तो फिर साधना करने के लिए तो वैराग्य की बहुत जरूरी होती है। तो जैसे देवता उनके भोग भोगते भोगते उसके चित्त में वितृष्णा उत्पन्न हो गई देवताओं के भोगों के प्रति भी, तो फिर देवता शरीर छूट जाता है और मुक्त तो वहां होगा नहीं, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की साधना करने के लिए पुनः मनुष्य लोक में आता है। इसलिए कहा स पुनरावर्तते, वो फिर इस मनुष्य लोक में आकर के साधना, यहां फिर श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जायते, सूचिनाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जायते हो जाता है। जो पवित्र लोग हैं और अच्छे सुविधा संपन्न जीवन जी रहे हैं, ऐसे साधकों के घर में उसका जन्म हो जाता है। गौतम बुद्ध जैसे, सिद्धार्थ जैसे बन करके आ जाते हैं और जितनी साधना फिर छूटी थी, वह साधना की वृत्ति देवता शरीर छोड़ते समय स्वर्गीय भोगों के प्रति भी उनकी अनासक्ति रही, वैराग्य की वृत्ति रही, तो मनुष्य लोक के भोगों में तो आसक्त होने का कोई प्रसंग ही नहीं आता। लेकिन जन्म लेते समय बीच में थोड़ा वो एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करते समय मूर्छित होता है ना, तो मूर्छित होने से वो वृत्तियां सब शांत रहती हैं। जब उन मूर्छित वृत्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए कोई न कोई सहज प्रसंग सामने आ जाते हैं तो पहले के संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। तो जैसे सिद्धार्थ के सामने एक वृद्ध चल रहा था, जब घूमने गए थे, लड़खड़ाते हुए चल रहा था बेचारा, जैसे शरीर की जीर्ण शीर्ण स्थिति थी। उसे देख करके पूछा, ये कौन है? तो कहा, ये मनुष्य शरीर एक दिन हमारे जैसा ही युवा था, आज कुछ समय बाद हम लोगों की भी आजीवा है, तो यही स्थिति होने वाली है। वो वैराग्य की वृत्ति को प्रकट कर दिया। फिर आगे थोड़ा चले तो एक मुर्दा दिखा, कहा ये कौन है? तो कहा, ये मरा है मनुष्य ही है, एक दिन हम जैसा ही था, कई लोगों को पहुंचाया स्मशान यात्रा में, आज चार लोगों के कंधे पे बैठ करके जा रहा है। कहा, हमको भी एक दिन ऐसा ही होना होगा। कहा, बिल्कुल। तो और भी वृत्ति अभिव्यक्त हो गई उनकी, और इन दो दृश्यों ने ही वैराग्य की वृत्ति को, जो पहले से ही थी, दृढ़ कर दिया और निकल गए। फिर आगे 40 दिन में 40 दिन की साधना बाकी थी, वो कर दी और साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मुक्त हो गए। इस प्रकार ओंकार की उपासना करने, द्वितीय मात्रा की उपासना करने वाले साधक भी जो स्वर्गलोक गए वहां का सुख भोगा, उसके लिए तो कोई अलग से कर्म उन्होंने किया नहीं था, तो कुछ साधना ये जो ब्रह्म ज्ञान के लिए कर रहे थे उसमें कटौती होगी कि नहीं होगी? वहां का सुख होगा तो